लेकिन इस आयत में तो जिक्र किसी और का है। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा। आइए अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी सुन लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, काफिर की जब दुनिया की आखिरी घड़ी आती है तो इसके पास स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आसमान से आते हैं और इसके साथ टाट होता है। टाट समझते हैं? झूठ छुपते है ना। हम तो नरम बिस्तरों पे भी मजे से नहीं सो पाते, उसको टाट मिलेगा, यानी गंदे बदबूदार कफन में उसको लपेटा जाता है। इसकी निगाह तक इसे यही नजर आते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और इसके गजब की तरफ चल। ये सुनकर वो रूह बदन में छुपने लगती है, जिसे मलकुल मौत जबरन घसीट कर निकालते हैं। कहाँ लिखा है कुरान में, किसी को पता? वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा मौत की जख्तियां, और वो जो डूब डूब के जान निकालते हैं। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता, और उसके जिस्म के बंद खोलते हैं, ये काफिर की जान निकलती है। वस्साबिहाति सबहा, ये मोमिन की जान है, नरमी से निकलती है। उधर तो ऐसे था जैसे खुशबू खुली रह गई। हदीस में आता है जैसे खुशबू की शीशी खुली रहे तो क्या होगा, कहा एक दो दिन में वो सब खुशबू उड़ जाएगी और बोतल खाली है। कहा मोमिन की रूह इतने प्यार से निकल जाती है कि जिस्म का बुत पीछे रह जाता है। और इसके बरक काफिर की कैसे निकलती है, रिवायत में आता है कि अगर खारदार शाख पे यानी कांटों वाली झाड़ पे गीला कपड़ा डाल दो मलमल का, फिर उस कपड़े को खेचो तो क्या होगा, फरमाया वो कपड़ा उधड़ उधड़ जाएगा। इस तरह काफिर की रूह उधड़ उधड़ के निकलती, छुपती है ना, उसको पता है ना। और जब ये बदन में छुपती है ना तो मलकुल मौत फिर जिस्म के जोड़ों पे मारते हैं हैमर। हदीस में आता है काफिर को मौत के वक्त जिन हथौड़ों से मार पड़ती है, अगर दुनिया के बड़े पहाड़ पे वो हथौड़ा रख दिया जाए तो उसके वजन से वो पहाड़ दब जाए। ये सही रिवायात है, हमें यकीन नहीं आए तो और बात है, अल्लाह हमें एग्जैजरेशन से बचाए। लेकिन आप देखिए कि मलकुल मौत जबरन घसीट घसीट कर मौत निकालते हैं। ये जो मौत की सख्तियां बाज औकात होती है ना, वो इस किस्म की भी होती हैं। इस वक्त वो फरिश्ते इनके हाथ से एक आंख छपकने में ले लेते हैं और इस जहन्नमी टाट में लपेट लेते हैं, और इससे नहायत ही सड़ी हुई बदबू निकलती है, क्योंकि बाद और फाजिर दुनिया में भी तो बदबू ही फैलाता था ना गंदी चीजों की। ये इसे लेकर चढ़ने लगते हैं। फरिश्तों का जो गिरोह मिलता है इससे पूछता है, ये नापाक रूह किसकी है? ये इस रूह का बदतरीन नाम जो दुनिया में था इसे बताते थे, यानी जैसे बदमाश और चोर डाकू जो भी उसका बुरा नाम होगा वो लेते हैं। फिर आसमान का दरवाजा इसके लिए खुलवाना चाहते हैं मगर खोला नहीं जाता। फिर रसूलुल्लाह ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, इसकी किताब सिज्जीन में सबसे नीचे की जमीन में रखो। जैसे इल्लीयीन में नेक लोगों का नामे अमाल है ना साथ में आसमान के ऊपर, इसी तरह सातों जमीनों के नीचे बिनीत दार सातवें उसके नीचे से जीन नाम का गढ़ है जहां पे इनकी रूहें रखी जाती हैं। फिर इसकी रूह वहां से फेंक दी जाती है। फिर आपने यह आयत तिलावत की, सूरत इब्राहिम में भी आप इसका तस्करा पढ़ेंगे, हज इब्राहिम के वमई युश्रिक बिल्लाही फका अन्नमखर मिन अस्समाई, बस जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया के वो तो जमीन से गिरा। फतख तफहु तौईर, फिर इस परिंदे उसको उचक लेते हैं, और तखवी बिहिर रीह, या फिर हवाएं उसको लिए फिरती हैं, फी मकान सहीक, दूर की जगह पे, यानी मरने वाले की रूह को नीचे फेंका जाता है तो उसको उचक लेते हैं और उसको कबूल नहीं किया जाता। फिर कब्र में इसका सवाल जवाब होता है, वही सवाल इससे भी है, इसके जिस्म में इसकी रूह डाली जाती है। फिर दो फरिश्ते आते हैं, फिर वो यही पूछते हैं मन रब्बू का, ये कहता है हाय लादरी लादरी, आई डोंट नो आई डोंट नो। बल्कि रिवायत में तो वो कहता है खाए मुझे खबर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, काश मैं पढ़ता और लिखता। ये रिवायत के लफ्ज है अरबी के, कहता है काश मैं कुछ पढ़ लेता कुछ लिख लेता। इसकी एक दलील तो आप हर रात सोने से पहले पढ़ते हैं, वो क्या है, जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े भी लोग एक अफसोस करेंगे, लौकुन्ना नस्मा नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, बोलो कुन्ना नस्म, काश हम सुन लेते। आज नहीं सुनना चाहते ना, मसरूफ बहुत है। करता क्या? मैं सोची इस वक्त अगर हम यहाँ ना आते तो करते क्या? वल्लाही क्या, हम दुनिया के भी को कार आमद है। चले कोई हम साइंटिस्ट होते, इंसानियत की खिदमत कर रहे होते, हम कुछ और ही करते। हम करते क्या, इसी बुत को तो पालते हैं जिसको मट्टी में जाना है, इसके साथ कल ये होना है। वलो कुन्ना नस्मऊ नाकिलू, कार सुनते और अकल इस्तेमाल करते, मा कुन्ना फी असहाबे सईर, कभी भी आग वालों में ना होते। अफसोस होगा उस वक्त। और हाय अदलादरी, सिर्फ लफ्ज अल्लाह नहीं आएगा जुबान पे, चाहे 100 दफा तस्बीह पढ़ी हो। दीन का नाम, इस्लाम का नाम नहीं आएगा, क्योंकि दीन तो कितने दीनों से मिलके बना। रसूलुल्लाह का नाम जुबान पे नहीं आएगा। इतने में आसमान से निदा आती है कि मेरे इस गुलाम ने गलत कहा, इसके लिए जहन्नुम की आग बिछा दो और जहन्नुम का दरवाजा इसकी कब्र की तरफ खोल दो। वहां से इसे गर्मी और आग के झोंके आने लगते हैं। इसकी कब्र इस पर तंग हो जाती है, यहाँ तक कि इसकी इधर की पसलियां उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा कि बेनमाजी की कब्र इतनी तंग की जाती है, आप लोग मेरे हाथों की तरफ देखें, यानी आपने अपने हाथों से बताया कि कब्र इतनी तंग की जाती है कि दाई पसलियां बाई पसलियों में यूं घुस जाती हैं। आपने खुद करके ये चीज दिखाई सहाबा को कि पसलियां बीच में, जिसको कहते हैं ना कचूमर निकाल दिया जाता है, इतनी कब्र तंग हो जाती है। आप जो मर्जी कपड़ों पे फूल डालें, खुशबू डालें, उनके कतबे लगाएं, लेकिन अंदर के मामले अल्लाह जानता है। फिर इसके पास एक नहायत मकरूह और डरावनी सूरत वाला, बुरे कपड़े पहने हुए, बड़ी बदबू वाला आता है और इससे कहता है, अब इन बुराइयों का मजा चख, इस दिन का तुझसे वादा किया जाता था। ये पूछता है कि तू कौन है कि दाई पसलियां बाई पसलियों में यूं घुस जाती हैं। आपने खुद करके ये चीज दिखाई सहाबा को कि पसलियां बीच में, जिसको कहते हैं ना कचूमर निकाल दिया जाता है, इतनी कब्र तंग हो जाती है। आप जो मर्जी कपड़ों पे फूल डालें, खुशबू डालें, उनके कतबे लगाएं, लेकिन अंदर के मामले अल्लाह जानता है। फिर इसके पास एक नहायत मकरूह और डरावनी सूरत वाला, बुरे कपड़े पहने हुए, बड़ी बदबू वाला आता है और इससे कहता है, अब इन बुराइयों का मजा चख, इस दिन का तुझसे वादा किया जाता था। ये पूछता है कि तू कौन है, तेरे तो चेहरे से वहशत और बुराई टपक रही है। वो जवाब देता है, मैं तेरा खबीस अमल हूँ, तेरे गंदे अमल हूँ। ये कहता है, या अल्लाह कयामत कायम ना हो, यानी मतलब कि फिर इंतजार करता है। इसी रिवायत से आगे थोड़ा सा आगे बढ़ती है बात कि मोमिन की रूह को देकर जमीन व आसमान के तमाम फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफरत और रहमत करते हैं और इसके लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं। और फरिश्तों की ये तमन्ना होती है कि अल्लाह करे ये रूह हमारी तरफ से आसमान पर चढ़े। मुझे ऐसे लगता है जैसे दुल्हन के इस्तकबाल में लोग खड़े होते हैं ना, तो दिल करता है हमारे पास से ही गुजरे। इस तरह मोमिन के साथ है, जबकि काफिर की कब्र में अंधा बहरा गूंगा फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, जिसके हाथ में गुर्ज होता है, गुर्ज समझ ले हंटर, और अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो मट्टी हो जाए। एक दफा पड़ता है तो अब सोचिए पहाड़ पे पड़े तो वो क्या होगा, तो इंसान का क्या हाल है, उसका खून गोश्त कीमा हो जाता है उस इंसान का। लेकिन उसके बाद दोबारा वो जैसा था उसको दोबारा वैसा कर दिया जाता है और अल्लाह ताला कहता है फिर करो, फिर फरिश्ता उसको दोबारा गुर्ज मारता है, जिससे वो चीखने और चिल्लाने लगता है, जिसे इंसान और जिन्नात के सिवा तमाम मखलूक सुनती है। शुक्र करें हमें ये आवाजें नहीं आती। आपको था कि एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो आपका जो खच्चर था ना वो बिदकने लगा, तो आप जाना चाह रहे हैं, वो रुक रहा है, तो आपने फरमाया कि इस वक्त कब्र में या साहिबे कब्र को अजाब हो रहा है और ये जानवर उसको सुन के बिदक रहा है। इसी तरह एक मौके पे आप गुजरे तो आपने उतर के हरी शाखें उतारी, यानी फ्रेश लीव्स जो उसकी ब्रांचेस थी, और दो कब्रों पर डाल दी, कहा इन दोनों को अजाब हो रहा है, एक को पेशाब की छींटों से न बचने पे, एक को चुगलखोरी पे, और जब तक ये शाखें हरी रहेंगी ये अजाब से बचे रहेंगे। क्यों? कि शाखें भी ये अल्लाह की तस्बीह करती हैं, सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाती मा फिल अर्ज। एक मौजज़ा था, इससे ये नहीं है कि अब हम कब्रों पे पूरे दरख्त ही लगा दें, इसकी कोई सनद नहीं है। तो ये दुआ करेंगी जब तक तो ये मुतमईन होंगे। ये सारे अमल हदीसों में लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला किसी भी वीकेंड कोई ऐसी जगह मुंतखब कर लें, मेरा बड़ा दिल है कि हम सफरे आखरत के पूरे मरहले 3-4 टॉपिक्स की सूरत में पढ़ें कि मरने से लेके जन्नत या जहन्नम तक क्या होता है और उसकी पूरी डिटेल हदीसों की सूरत में। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, नेक शख्स से बस फरिश्ते आके कहते हैं, मुतमईन नफ्स तू तैयब जिस्म में था, तू तारीफों वाला बनकर निकल और जन्नत की खुशबू और नसीमे जन्नत की तरफ चल, उस अल्लाह के पास चल जो आज तुझ पर गुस्से में नहीं है। اللہ اکبر. پھر اس کو لے کے آسمانوں پہ چڑھتے ہیں. یعنی بہت خوبصورت روایتیں ہیں, لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے, صرف بیچ بیچ میں سے کچھ سنا رہی ہوں. ایک موقع پہ خبیث نفس کو کہتے ہیں کہ تو خبیث جسم میں تھی, تو برا بن کر نکل اور تیز کھولتے ہوئے پانی اور لہو پیپ اور اسی قسم کے مختلف عذابوں کی طرف چل. فرشتے اس کو یہی سناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اس خبیث کو مرحبا نہ کہو, یہ خبیث جسم میں تھی, تو بد بن کر لوٹ جا, اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اور دوبارہ اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. کب تک جنت میں نہیں جا سکتے؟ لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الحیات. جمل کا لفظ بھی آتا ہے, پہلے اس کی ایک تفسیر نوٹ کر لیجئے پھر دوسری کریں گے. جمل عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا کے ہم سب کو بتا دیا کیسے شخص کا جنت میں جانا ناممکن ہے. کیسا, کتنا ناممکن ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ محاورہ ہے, یہ جو نا حتی یلج الجمل فی سم الحیات. سم کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ کو. کیسے؟ اردو میں کوئی لفظ ہے؟ مسام. ہمارے جسم پہ یہ سوراخ ہوتے ہیں نا, مسام, یہ بھی سم ہے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی چیز ہے. اور حیات کہتے ہیں سوئی کو. ٹھیک ہے, الحیات درزی کو بھی کہتے ہیں نا. تو سوئی کے ناکے میں اونٹ گزر سکتا ہے؟ نہیں گزر سکتا نا. ٹھیک ہے, تو گویا کہ ایک محاورہ جیسے اردو میں ناممکن کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بعض قراتوں میں جمل کا لفظ جمل بھی ہے, اور جمل کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی کو, موٹا تھریڈ. اور موٹا دھاگا بھی جو ہوتا ہے نا, وہ بھی سوئی میں سے نہیں گزرتا. مطلب یہ کہ ایسے شخص کا جنت میں جانا ممکن ہی نہیں. تو گویا کہ ساری بات کا خلاصہ کیا, ان کے اعمال جنت میں نہیں جا سکتے, اوپر نہیں جاتے, ان کی روحیں نہیں جاتی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آگے ہم پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ دعاؤں کے لیے بھی اوپر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ کلمۃ الطیب, اس کی طرف کلمہ طیب چلتے ہیں. یہ جو ہم منہ سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, ہمارے نیک عمل اس کو اوپر لے کے جائیں گے. میں بھی اس کی تفسیر شروع کروں گی تو بہت ٹائم لگے گا, وقت پہ پڑھتے جائیں. چل پڑے ہیں نا تو آگے جائیے گا, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کی آیت میں.